नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत दो दशक से भी कम समय में विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के जिला चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेजों की 16 फरवरी तक जांच करें। नई दिल्ली में अगले सप्ताह आयोजित होने वाले भारत एआई इम्पैक्ट समिट में विश्व के शीर्ष नेता भाग लेंगे। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत अमेरिका व्यापार समझौते में किसानों के हितों की पूरी तरह से रक्षा की गई है। और ओपन मास्टर्स गेम्स अबुधाबी 2026 में भारत के किशोर कुमार चंदेरा मुगन ने पुरुष हैमाथ्रो में स्वर्ण पदक और मोहम्मद अंसार ने कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कई वैश्विक चुनौतियों और व्यवधानों के बावजूद ये दशक भारत के लिए अभूतपूर्व विकास, प्रभावी निष्पादन और लोकतंत्र को सशक्त करने वाला रहा है। नई दिल्ली में कल शाम आयोजित ईटी नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 21वीं सदी के इस दशक में भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है। उन्होंने बताया कि पिछले दशक की शुरुआत में भारत विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था और आज देश तेजी से आगे बढ़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है।
मुझे बहुत गर्व है, अनेक डिसरप्शन के बीच भी भारत के लिए ये दशक अभूतपूर्व डेवलपमेंट का रहा है। पिछला दशक शुरू हुआ था तो भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था था। इतनी उथल पुथल में पूरी आशंका थी कि भारत और नीचे चला जाएगा, लेकिन आज भारत बहुत तेजी के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री गुवाहाटी में 5,450 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। वे सुबह डिब्रूगढ़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने मोरन बाईपास पर स्थित आपातकालीन लैंडिंग स्थल पर पहुंचेंगे, जहां वे लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों का हवाई प्रदर्शन भी देखेंगे। ये आपातकालीन लैंडिंग सुविधा पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह की पहली सुविधा है, जिसे वायुसेना के समन्वय से आपात स्थिति में सैन्य तथा नागरिक विमानों के उतरने और उड़ान भरने में सहायता के लिए डिजाइन और विकसित किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
प्रधानमंत्री डिब्रूगढ़ में कार्यक्रम समाप्त होने के बाद दोपहर लगभग 1 बजे गुवाहाटी पहुंचेंगे और ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन करेंगे, जो गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को जोड़ता है। पुल के उद्घाटन के बाद पासी स्थित लासितगांव जाएंगे और वहां से IIM गुवाहाटी के अस्थायी परिसर और कामरूप जिले के अमीनगांव में स्थित उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राष्ट्रीय डेटा केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा भारत के 4 शहरों के लिए PM ई बस सेवा योजना के तहत 225 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। इनमें से 100 बसें गुवाहाटी के लिए, 50-50 बसें नागपुर और भावनगर के लिए और 25 बसें चंडीगढ़ के लिए है। दोपहर 2 बजे प्रधानमंत्री गुवाहाटी में भाजपा कार्यकर्ताओं के बूथ सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री शाम को नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जिसके साथ ही उनका असम का 1 दिवसीय दौरा समाप्त हो जाएगा। अमीनुल हक, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
प्रधानमंत्री मोदी आज चंडीगढ़ के सेक्टर 43 स्थित बस अड्डे से पीएम ई बस सेवा योजना के अंतर्गत नई इलेक्ट्रिक बसों को वर्चुअल रूप से झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पीएम ई बस सेवा योजना अगस्त 2023 में शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल द्वारा 169 शहरों में 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का लक्ष्य तय किया गया था। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के सभी जिला चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया से जुड़े उन दस्तावेज को अपलोड करें जो आयोग और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य किए गए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिला चुनाव अधिकारी सुनवाई के दौरान लोगों द्वारा सौंपे गए दस्तावेज की 16 फरवरी शाम 5 बजे तक व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करेंगे और अनधिकृत दस्तावेज अपलोड पाए जाने की जिम्मेदारी जिला चुनाव अधिकारियों की होगी। केरल के मुख्य चुनाव अधिकारी रतन यू केलकर ने बताया है कि राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 122 सीटों पर मसौदा विशेष गहन पुनरीक्षण सूची से छूटे हुए उम्मीदवारों की सुनवाई पूरी कर ली गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक सहयोग में एक ऐतिहासिक उपलब्धि साबित होगा। ये वैश्विक दक्षिण में आयोजित होने वाला पहला वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन है। ये समिट 16 से 20 फरवरी तक नई दिल्ली में आयोजित होगा। एक रिपोर्ट।
यह शिखर सम्मेलन एक जिम्मेदार, समावेशी और जन केंद्रित एआई भविष्य को आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करता है। नई दिल्ली में आयोजित होने वाले इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में 20 देशों के नेता भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान वैश्विक उत्तर और वैश्विक दक्षिण के प्रतिनिधि ठोस उपलब्धियां प्रस्तुत करेंगे। सम्मेलन में एआई सुरक्षा, शासन, नैतिक तैनाती, डेटा संरक्षण और संप्रभु एआई के प्रति भारत के दृष्टिकोण को कवर करने वाले 700 से अधिक सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक सहयोग को बढ़ाना, साझा मानकों को बढ़ावा देना और सतत विकास के लिए एआई के उपयोग में भारत को एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में स्थापित करना है। आकाशवाणी समाचार के साथ समर सिंह, दिल्ली।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत अकेला ऐसा देश है जिसने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, लिक्टनस्टाइन और अमरीका के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है। कल नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत ने इन समझौतों में अपने किसानों, दुग्ध उत्पादन क्षेत्र और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के हितों का ध्यान रखा है। श्री गोयल ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते के संबंध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा साझा किए गए वीडियो में लगाए गए आरोपों से इनकार किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि श्री गांधी ने जिन लोगों को किसानों का प्रतिनिधि बताया है वे वास्तव में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि श्री गांधी के आरोप देश के अन्नदाता किसानों को गुमराह करने का प्रयास है।
We have protected the interests of all our farmers.
हमने अपने सभी किसानों के हितों की रक्षा की है। यह एक ऐसा समझौता है जिससे हमारे किसानों, मछुआरों, मेहनती युवाओं, छोटे उद्योगों, स्टार्टअप्स, कारीगरों और विश्वकर्माओं को मदद मिलेगी। मैंने पहले भी कई बार स्पष्ट किया है कि सोया मील और मक्का पर कोई रियायत नहीं दी गई है, इसलिए इससे किसानों के हितों को कोई नुकसान नहीं होगा। वे बार बार एक ही बात बोलकर सिर्फ झूठ द्वारा किसानों को डराने की कोशिश कर रहे
हैं।
पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि भारतीय पर्यटन विकास निगम ITDC ने उत्कृष्ट सेवाओं के साथ देश सेवा की है। उन्होंने बात कल नई दिल्ली में ITDC के 60 वर्ष और द अशोक होटल के 70 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में कही। उन्होंने कहा कि ITDC को भारत के पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के बहुआयामी विकास का इंजन है।
जब भारत की पहचान, दिल्ली की पहचान ITDC और दी अशोका, इन दोनों का 60 और 70 साल पूरा होने का सेलिब्रेशन हम मना रहे हैं, हमारे लिए ये केवल एक खुशी का अवसर या एक 60 या 70 साल की यात्रा पूरी करने का अवसर नहीं है, हमारे लिए एक संकल्प का अवसर है कि बदलते हुए भारत के साथ में आगे बढ़कर हम भारत की तस्वीर, भारत की संस्कृति, भारत के गैस्ट्रोनॉमी, भारत की खान पान, भारत के अतिथि सत्कार की परंपरा, इस सब को पूरे विश्व में और अधिक तरह से परिलक्षित करें।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ नाम से एक श्रृंखला शुरू कर रहा है। आज इसकी पहली कड़ी में हम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ चर्चा कर रहे हैं। कार्यक्रम में उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और मिशन लाइफ के बारे में किए गए वायदों और देश की उपलब्धियों की जानकारी दी है। उन्होंने ये भी बताया है कि किस प्रकार अलग अलग मंत्रालय इस मुद्दे पर एक ही लक्ष्य के लिए प्रयासरत हैं।
भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जिन्होंने न केवल अपने लक्ष्यों को पूरा किया बल्कि अपने रिवाइज NDCs भी पेश किए, और उसके साथ ही जो हमारे 5 क्वालिटेटिव लक्ष्य थे उसमें अब हमने रिवाइज करके एक बड़ा लक्ष्य मिशन लाइफ किया।
प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। ये कार्यक्रम आज शाम आकाशवाणी गोल्ड पर शाम 5:10 पर प्रसारित होगा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP ने आम चुनाव में 2/3 बहुमत हासिल कर लिया है। अब चुनाव परिणाम के अनुसार पार्टी ने 297 में से 209 सीटें जीती हैं। 300 सदस्यों वाली संसद में सरकार बनाने के लिए 151 सीट की आवश्यकता होती है। जीत के बाद बीएनपी के अध्यक्ष तारिक रहमान ने समर्थकों को धन्यवाद दिया और पार्टी नेताओं के साथ सत्ता हस्तांतरण पर चर्चा की। स्थायी समिति के सदस्य आमिर खसरू महमूद चौधरी ने बताया कि शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं। एक रिपोर्ट।
बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष तारिक रहमान ने शुक्रवार को अपने गुलशन स्थित निवास के बाहर समर्थकों से मुलाकात की और उनका आभार जताया। बाद में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सत्ता हस्तांतरण पर चर्चा के लिए बैठक की। स्थायी समिति के सदस्य अमीर खुसरो महमूद चौधरी ने कहा कि नव निर्वाचित सांसदों के शपथ ग्रहण और सरकार गठन की तैयारी की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार सांसद 12 फरवरी को शपथ ले सकते हैं। बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने इस जीत को खुशी और भावुक क्षण बताया। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को सुधारना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, भ्रष्टाचार पर रोक लगाना और न्याय सुनिश्चित करना नई सरकार की प्रमुख प्राथमिकताएं होगी। इस बीच बांग्लादेश जमाते इस्लामी और उसके 11 दलों के गठबंधन ने मतगणना में अनियमितताओं का आरोप लगाया और शिकायतों का समाधान न होने पर जन आंदोलन की चेतावनी दी। हालांकि जमात नेताओं ने जुलाई नेशनल चार्टर को लागू करने के समर्थन की भी पुष्टि की। नवल सिंह परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
भारतीय एथलीटों ने ओपन मास्टर्स गेम्स अबुधाबी 2026 में पुरुष हैमर थ्रो में शानदार प्रदर्शन किया है। किशोर कुमार चंदीरा मोगन ने स्वर्ण पदक और मोहम्मद अंसार ने कांस्य पदक जीता है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश में घने कोहरे की स्थिति का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में कल तक बिजली गिरने के साथ साथ गरज के साथ बारिश की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
धन्यवाद कनक। बांग्लादेश में 20 साल बाद बीएनपी की सत्ता में वापसी और प्रधानमंत्री मोदी के नए कार्यालय सेवा तीर्थ का उद्घाटन आज अनेक अखबारों की सुर्खियां हैं। नवभारत टाइम्स लिखता है बांग्लादेश में खालिदा के बेटे तारिक की बम्पर जीत। दैनिक भास्कर ने लिखा है 35 साल बाद बेगम राज के बाद अब प्रिंस तारिक रहमान होंगे नए प्रधानमंत्री। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं भारत को रहमान से रहेंगे हिंदुओं की सुरक्षा और अच्छे पड़ोसी की उम्मीद। हिन्दुस्तान ने पड़ोस में बदलाव शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखा है बीएनपी की जीत बांग्लादेश में तुलनात्मक रूप से सबसे बेहतर पार्टी की सफलता है। अवामी लीग और बंगबंधु मुजीबुर रहमान के प्रति बीएनपी का रुख क्या कहता है ये देखने वाली बात होगी। पत्र ने उम्मीद जाहिर की है कि इन चुनावों के बाद बढ़ती कट्टरता पर लगाम लगेगी, फैसले ऐसे लिए जाएंगे जो दक्षिण एशिया को तरक्की की ओर ले जाएंगे। अखबारों ने सेवा तीर्थ के उद्घाटन के बाद पहले दिन लिए गए फैसलों का उल्लेख किया है। दैनिक भास्कर लिखता है 4 फैसले, 1.5 लाख तक कैशलेस इलाज, नया स्टार्टअप फंड। अमर उजाला की सुर्खी है अब 6 करोड़ लखपति दीदी बनेंगी। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री मोदी का बयान दिया है सेवा तीर्थ विकसित भारत के लिए अहम। दैनिक जागरण की टिप्पणी है सेवा तीर्थ से पहले ही दिन प्रधानमंत्री ने की महिलाओं, युवाओं और किसानों की सेवा। अमर उजाला ने खबर दी है एआई सम्मेलन में शामिल होंगे विश्व के 20 शीर्ष नेता। लोकसत्ते ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के हवाले से बताया है रेलवे ने 3 करोड़ संदिग्ध यूजर आईडी बंद की। हिन्दुस्तान ने एम्स के अध्ययन के हवाले से बताया है भारी धातुओं का प्रदूषण दे रहा भूलने की बीमारी, सामान्य लोगों की तुलना में कमजोर याददाश्त वालों में ये धातु अधिक मिली है। दिल्ली खेल महाकुंभ शुरू होने का समाचार भी नव भारत टाइम्स सहित कई अखबारों ने अपने पृष्ठ पर प्रकाशित किया है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा भारत 2 दशक से भी कम समय में विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के जिला चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेजों की 16 फरवरी तक जांच करें। नई दिल्ली में अगले सप्ताह आयोजित होने वाले भारत एआई इम्पैक्ट समिट में विश्व के शीर्ष नेता भाग लेंगे। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत अमरीका व्यापार समझौते में किसानों के हितों की पूरी तरह से रक्षा की गई है। और ओपन मास्टर्स गेम्स अबुधाबी 2026 में भारत के किशोर कुमार चंदीरा मोगन ने पुरुष हैमर थ्रो में स्वर्ण पदक और मोहम्मद अंसार ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।